सफा नंबर 90 और अंग्रेजी की इब्तदा अमूमन पांचवी जमात से होती थी। अहम मुमकिन है कि वह पहली जमात का इम्तिहान पास करने के बाद तीसरी जमात में गए हों। डॉक्टर वहीद कुरैशी मसर है कि अगर इकबाल ने बराह रास्त किसी बलाई जमात में दाखिला लिया होता तो इनका दाखिला नादर अलवकू होता और वो अज़ा व अहबाब से इसका जिक्र ज़रूर करते, लेकिन अगर 5 साल मकतब नशीनी के बाद 10 साल की उम्र में वो स्कूल की पहली जमात का इम्तिहान पास करके तीसरी जमात में गए तो ये कौन सी जिक्र करने वाली बात थी? दाखिले के नादर अलवकू होने का मकान या इनके जिक्र करने का एहतमाल तो तब था कि वो जहानत के सबब अपनी उम्र की निस्बत से किसी बहुत ऊपर की क्लास में दाखिल होते। मुसन्नफ इकबाल दरबार खाना के मुताबिक इकबाल की दो बहनें करीम भी और जैनब भी बारहा ये कहते सुनी गई हैं कि तला भी इकबाल से तकरीबन 3 साल बड़ी हैं और करीम भी इनसे 3 साल छोटी। मुसन्नफ बयान करते हैं कि उन्होंने करीम भी की जुबानी सुना है कि इकबाल इनसे 3 साल बड़े थे। उन्होंने दो बहनों की तारीख पैदाइश की नकलें शाया की हैं। मुसन्नफ के नज़दीक तला बी की तारीख पैदाइश 2 सितंबर 1870 है और करीम बी की 14 नवंबर 1876 और फिर इसी बिना पर इकबाल का सन विलादत 1873 करार दिया है। तला बी का सन विलादत तो बिलाशुबा दुरुस्त रहेगा, लेकिन करीम बी की पैदाइश का अंदराज मशकूक है, इसलिए इनके बयानात की कोई तईदी शहादत मौजूद नहीं। डॉक्टर वहीद कुरैशी सियालकोट में इकबाल की हम जमात गरम पीर के बयान पर इन्हसार करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इकबाल की पैदाइश 29 दिसंबर 1873 करार देने के क्राइम ज़्यादा वकी है। इकबाल की तारीख विलादत के तयन से मुतलक तहकीकात के दौरान करम बी का बयान 1974 में लिया गया। करम बी बयान करती हैं कि इकबाल की पहली शादी के वक्त इनकी उम्र 19 बरस थी और करम बी की 17 बरस। ये बयान इतनी मुद्दत के बाद हाफजे की बुनियाद पर दिया गया और इतने अरसे के बाद याददाश्त का सही रहना मुमकिन नहीं। बहरहाल डॉक्टर वहीद कुरैशी ने इससे बेशतर अपनी तहरीर में इस मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए मुतज़क्करा तारीख विलादत की बजाय 9 नवंबर 1870 ही को सही करार दिया है। 9 नवंबर 1870 इस तारीख विलादत का अंदराज सियालकोट के म्यूनसिपल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, मगर ये इकबाल के हिजरी सन में अपनी बयान करदा तारीख विलादत का ईसवी सना में सही मुतबादल है। 1907 में अपने तहकीकी मकाले के साथ दिए गए अंग्रेजी में तहरीर करदा इकबाल के तौरफी नोट का लफज ब लफज उर्दू तर्जमा ये है, मैं 3 ज़ी क़द 1294 बा मुताबक 1876 को सियालकोट पंजाब इंडिया में पैदा हुआ। मेरी तलीम की इब्तदा अरबी और फारसी के मुताले से हुई। चंद वर्ष बाद मैंने शहर के एक स्कूल में दाखिला लिया और यूनिवर्सिटी के मराहिल तय करना शुरू कर दिए। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला पब्लिक इम्तिहान 1891 में पास किया। 1893 में मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी के बाद मैं स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट में दाखिल हो गया, जहाँ 2 साल तलीम हासिल करने के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटरमीडिएट इम्तिहान 1895 में पास किया। 1897 और 1899 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बरतरतीब बीए और एमबीए में कामयाबी हासिल की। यूनिवर्सिटी में तलीम के दौरान खुशकिस्मती से मैंने कई तलाई और नकराई तमगे और वजीफे हासिल किए। एमए कर चुकने के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में मिकलोड अरेबिक रीडर तैनात हुआ, जहाँ से मैंने 3 साल तक हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के मौजूदात पर लेक्चर दिए। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा का असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। 1905 में यूरोप में अपनी तलीम मुकम्मल करने की खातर मैंने यूनिवर्सिटी से 3 वर्ष की बिला तनख्वाह रुख्सत ली और अब इसी मकसद के लिए यहाँ मुकीम हूँ। इस तारफी नोट से वाजह है कि 1907 में इकबाल ने हिजरी सन में अपनी मुकम्मल तारीख वलादत तहरीर करने के बाद कोसीन में इसका मुतबादल ईसवी साल लिखा है। तारफी नोट के पहले फिक्रे पर अहले इल्म ने कई जावियों से बहस की है, मसलन इकबाल को इनकी तारीख वलादत हिजरी सन में क्यों बताई गई, क्या यह तारीख वलादत इन्हें दुरुस्त बताई गई या किसी न किसी मकसद के पेश नज़र इसके गलत होने का अमकान है। इकबाल ने कोसीन में इस तारीख विलादत का मुतबादल महज ईसवी साल में क्यों दिया या किस हिसाब से दिया और इसे मुकम्मल तौर पर ईसवी कैलेंडर में तब्दील करने की जहमत क्यों ना की। इकबाल की विलादत हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के दौरे इस्तेहकाम में हुई, जाहिर है ईसवी कैलेंडर पंजाब में इसके इल्हाक के बाद नाफज किया गया, लेकिन मुसलमान अंग्रेज हाकमों से नफरत करते थे। सर सैयद अहमद खान की कोशिशों से तकरीबन 1870 से इनके आपस में तलुकात बेहतर होने शुरू हुए और मुसलमानों ने रोजगार के हसूल की खातर बाअमर मजबूरी बरतानवी हुकूमत को कबूल किया, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी निज़ाम कबूल करने पर रजामंद ना थे। इसी तरह इनके लिए ईसवी कैलेंडर कबूल करना भी मुमकिन ना था। इसलिए सफ़ा नंबर 92, ईसवी कैलेंडर के नफाज के बावजूद मुसलमानों में दीगर अमूर की तरह अपने मामलात की तरतीब के लिए हिजरी कैलेंडर ही मस्तअमल था और ईसवी कैलेंडर को दीनी या मजहबी अकायद की बुनियाद पर नफरत की निगाह से देखा जाता था। इतराज किया गया है कि सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए इस जमाने में अमूमन बच्चों की उम्र कम लिखवाने का रिवाज था, इसलिए मुमकिन है कि इकबाल को इनकी तारीख विलादत गलत बताई गई हो। डॉक्टर वहीद कुरैशी तहरीर करते हैं कि इकबाल के पास अपने सन पैदाइश के बारे में मालूमात नाकाफी भी हो सकती हैं और इनके ज़राए मालूमात नाकस भी हो सकते हैं। पैदाइश के वक्त ये शऊर बेदार होता है, ना कोई शख्स मरूजी तौर पर अपने पैदाइश के अमल को देख सकता है। ये इतलाआत तो हमेशा दूसरों से हासिल होती हैं, इसलिए इकबाल की पैदाइश के बारे में इनकी अपनी इतलाआत भी दूसरों के बयान पर मबनी है और इनके गलत होने का भी अमकान है। इनके जवाब में शेख इजाज़ अहमद बयान करते हैं कि तारफी नोट तहरीर करते वक्त इकबाल के पेशे नज़र किसी मुलाजमत का हसूल ना था, इसलिए कोई वजह ना थी कि वह खुद साख्ता या गलत तरीक पैदाइश तहरीर करते। अलावा अजीम अगर ये कहा जाए कि वालदैन ने इनके तरीके पैदाइश इन्हें गलत बताई तो ये बात इकबाल से छुपी ना रह सकती थी। बहरहाल एक झूठी तरीक साख्त करके इकबाल को बताना इनके वालदैन के मिजाज के खिलाफ था। इसी तरह ये गुमान करना भी दुरुस्त ना होगा कि इकबाल ने अपनी तरीके पैदाइश खुद साख्त कर ली, क्योंकि ऐसा फिर इकबाल के करैक्टर से मुताबकत नहीं रखता। वो एक बासूल आदमी थे और अगर कहीं फायदा पहुंचने का अमकान भी होता तो भी वो झूठा बयान देने को तैयार ना होते थे। इस सिलसिले में शेख इजाज़ अहमद ने इकबाल के करदार के मुतल्लिक एक वाकया बयान किया है। जब इकबाल ने सियालकोट में अपना मकान एक रिश्तेदार को बेचना चाहा तो रिश्तेदार को डर था कि मुबादा हमसाया हक शुफा का दावा कर दे, इसलिए रिश्तेदार ने इकबाल से कहा कि आम रवाज के तहत रजिस्ट्री में जायद मफरूजा जर्ब भी बै तहरीर कर दें। लेकिन इकबाल ने रजिस्ट्री में ऐसा तहरीर करने या रजिस्ट्रार के रूबरू इसकी हमायत में बयान देने से इनकार कर दिया। रिश्तेदार ने कहा कि जो रकम भी रजिस्ट्री में लिखी जाएगी वही रजिस्ट्रार के सामने इन्हीं दी जाएगी, इसलिए रजिस्ट्रार के सामने इनका बयान दुरुस्त होगा, मगर इकबाल ना माने। नतीजा ये हुआ कि हमसहाय ने इकबाल के रिश्तेदार पर हक शाबा शुफा का दावा किया और मुकदमा जीता। सैयद अब्दुल वहद मोइनी तहरीर करते हैं कि तारफी नोट लिखते वक्त इकबाल ने कोसीन में महज मुतबादल ईस्वी साल इसलिए दर्ज किया कि हिजरी तारीख को ईस्वी या इसके बरक्स तब्दील करने के लिए जंत्रियों की जरूरत पड़ती है जो इकबाल के ज़माने में खसूसन यूरोप में नायाब थी, इसलिए इनको ये तब्दीली मुस्तरद जंत्रियों के बगैर अंदाजे ही से करना पड़ी होगी। डॉक्टर वहीद कुरैशी इस दलील को काबिल कबूल नहीं समझते। इनकी राय में इस ज़माने में जर्मन ज़बान में भी ऐसी जंत्रियाँ शाया हो चुकी थी और इकबाल ने अपने तहकीकी मकाले के मतन में हिजरी सनैन को ईस्वी में बदलने के लिए इनसे इस्तफादा भी किया था, मगर अपने हालात के ज़मन में तकवीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं समझी और तकमीने से सिर्फ साल पैदाइश को मुंतकिल किया और दिन और महीने को छोड़ दिया। इनके ख्याल में इकबाल ने हिजरी सन को जिस तरह ईस्वी में बदला है इसके बारे में दो क्यास हो सकते हैं। एक तो ये कि इस मकसद के लिए उन्होंने तकवीम की बजाय ज़बानी हिसाब को तरजीह दी हो जिससे एक साल का फ़र्क बखूबी मुमकिन है। दूसरा ये कि उन्होंने मतबा आफ्ताब पंजाब लाहौर 1876 की जंत्री इस्तेमाल की हो जिसे दीवान बूटा सिंह ने शाया किया था, क्योंकि जंत्री के सफ़ा 22 पर 1293 कुछ इस तरह मरकूम है कि इसे बआसानी 1294 पढ़ा जा सकता है। बहरहाल उन्होंने इकबाल के इस अमल को बेएहतियाती का नाम दिया है। यूरोपीय यूनिवर्सिटियों के कायदे के मुताबिक तारफी नोट तहकीकी मकाला पेश करते वक्त इसके साथ दिया जाता है जो अमूमन जल्दी में लिखा जाता है। ऐन मुमकिन है कि इकबाल ने तहकीकी मकाला तहरीर करते वक्त तो हिजरी सनैन को ईस्वी में बदलने के लिए तकवीम इस्तेमाल की हो, क्योंकि ये मामला तहकीक का था, लेकिन साथ पेश करने के लिए अपना मुख्तसर सवानी खाका अजलत में तहरीर किया हो। बहरहाल इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि इकबाल ने हिजरी सन में अपनी तरीके विलादत को उम्र भर किसी ईस्वी सन में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल करने की जहमत गुवारा नहीं की। इसकी वजह यह हो सकती है कि इकबाल भी अपने बुजुर्गों की तरह ईस्वी सनैन पर हिजरी सनैन को तरजीह देते थे, इस बात का एतराफ़ डॉक्टर वहीद कुरैशी भी करते हैं। वो लिखते हैं कि इकबाल अगरचा खतूत में मकतूब आलिया की सहूलत के ख्याल से ईसवी तरीक़ें देते थे, लेकिन उन्होंने जो मंजूम तरीक़ें किए हैं 8 तरीक़ों के सिवा बाकी तमाम हिजरी सनीन में से, इसलिए हिजरी सन में इन्हीं जो हतमी तरीक़े वलादत वालदैन ने बताई इसे जो का तू रखा गया, बस वही तरीक़ इनकी निगाह में मोतबर थी जो 9 नवंबर 1877 के बराबर होती है। इन हालात में यह क्यास करना कि इकबाल ने तारफी नोट में हिजरी सन में तरीक़े वलादत का मुतबादल ईस्वी न देने में बेहतियाती से काम लिया दुरुस्त मालूम नहीं होता। मुमकिन उन्होंने ऐसा दनस्ता तौर पर किया और बाद में सारी उम्र इस पर कार बांध रहे हों। इन्हीं जब भी अपनी तरीके वलादत के इजहार की जरूरत पेश आई उन्होंने इसका मुतबादल ईस्वी साल 1876 ही समझा और बताते रहे। वो ये तरीके कार औलाद की तवारीख वलादत के बारे में कायम ना रखा गया। मालूम होता है कि इसी बिना पर नवाब सर ज़ुल्फ़िकार अली खान ने इनकी विलादत 1876 के लगभग तहरीर की, या फौक ने अपनी तहरीर बाद की तहरीरों में 1876 दर्ज किया और उन्होंने अपने पासपोर्ट में भी यही साल विलादत तहरीर किया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि मुतज़क्करा तारीख़ विलादत इकबाल के तलीमी रिकॉर्ड से किस हद तक मुताबकत रखती है। इकबाल के 1891 में मिडल पास करने के सर्टिफिकेट में इनकी उम्र 15 साल दर्ज है। शेख इजाज़त की राय में दरअसल ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक इस वक्त इनकी उम्र 14 साल थी और इस हिसाब से इनका साल विलादत 1870 बनता है। इसी तरह इकबाल ने 1897 में बीए की डिग्री ली और दाखिला फार्म में जो 1896 में दिया गया था इनकी उम्र 19 बरस तहरीर है। इस हिसाब से भी इनका सन विलादत 1870 बनता है। अलबत्ता 1893 में इनके स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिले के फार्म में दर्ज करदा उम्र 18 साल इस साल विलादत से मुताबकत नहीं रखती, क्योंकि इससे सन विलादत 1875 निकलता है जो गलत है। इकबाल की चंद बरस मकतब नशीनी की मुद्दत को डॉक्टर वहीद कुरैशी ने करम बीबी की मुबीना शहादत का सहारा लेते हुए 5 साल तक फैलाया है, मगर रकम की निगाह में चंद से मुराद कम अज कम 2 बरस और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बरस है। चंद को बकौल इनके कई समझना जायज नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत में लफज कई इस्तेमाल होता है। चंद डॉक्टर वहीद कुरैशी के ख्याल में बच्चे अमूमन 5 बरस की उम्र में पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए इकबाल को भी 5 बरस की उम्र में मकतब भेजा गया होगा। लेकिन रकम की राय में मुसलमानों में आम दस्तूर के मुताबिक बच्चे को 4 साल 4 माह और 4 दिन में बिस्मिल्लाह कराई जाती है और वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू करता है। शेख इजाज़ अहमद का बयान है कि इनके दादा शेख नूर मोहम्मद ने इन्हीं 4 साल 4 माह की उम्र में सैयद मीर हसन के पास पढ़ने के लिए बिठाया था, इसलिए क्यास किया जाता है कि इकबाल के वालिद ने इन्हीं भी इसी उम्र में कुरान मजीद पढ़ने के लिए बिठाया होगा। अगर इकबाल आम रिवाज के मुताबिक तकरीबन 4.5 साल की उम्र में मकतब नशीन हुए और चंद साल की मुद्दत तक मकतबी तलीम के हसूल के बाद 1885 में उन्होंने स्कूल की पहली जमात का इम्तिहान पास किया, लेकिन अपनी जहानत के सवाब दूसरी जमात की बजाय तीसरी जमात में चढ़े, तो इस हिसाब से 1891 में मिडल पास करते वक्त इनकी उम्र 14 या 15 साल होना बखूबी मुमकिन है। अगर इकबाल 1884 में स्कूल की पहली जमात में दाखिल हुए तो इस उम्र में इनकी उम्र 7 साल हो सकती है, यानी इन्होंने 2.5 वर्ष तक मकतबी तलीम हासिल की। लेकिन अगर सुल्तान महमूद हुसैन की तहकीक के मुताबिक 1885 और 1891 के 6 सालों में इकबाल ने 7 जमातें पास की हैं तो 1891 में इनकी उम्र 14 वर्ष होगी। इकबाल के ख़ानदान के बुजुर्ग और मोतबर अफराद के बयानात भी इस सिलसिले में काबिल तवज्जो हैं। इकबाल के बयान करदा हिजरी सन में अपनी तरीके वलादत के बारे में मालूमात का जरिया इनके वालदैन होंगे और ये क्यास करना मुमकिन नहीं कि मुतज़क्करा तारीख़ वलादत इनकी खुद साख्ता थी। शेख अता मोहम्मद ने अदारा इंकलाब को अपने तखमीने के मुताबिक वलादत इकबाल की तारीख 1876 बताई थी। शेख इजाज़ अहमद बयान करते हैं कि उन्होंने अपने वालिद शेख अता मोहम्मद से सुन रखा है कि वो उम्र में इकबाल से तकरीबन 18 साल बड़े थे। शेख अता मोहम्मद की सर्वस बुक में इनका सन विलादत 1859 दर्ज है। इस हिसाब से इकबाल का सन पैदाइश 1876 या 1870 बनता है। शेख इजाज़ अहमद ने अपनी वालदा अहलिया शेख अता मोहम्मद से सुन रखा है कि 1888 में इनकी शादी के वक्त इकबाल 5वीं जमात में पढ़ते थे और उम्र 10-12 साल थी। इस बयान की तस्दीक इकबाल का तरीमी रिकॉर्ड भी करता है। इकबाल की बहन करीम बीवी ने शेख इजाज अहमद के सामने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने अपनी वालदा से सुना था कि इकबाल जुमा के दिन फजर के वक्त पैदा हुए। तारीख 3 ज़िलक़ादा 1294 जुमे का दिन था। इस तारीख के अलावा इकबाल की कोई भी और तारीख विरासत से जुमा के दिन नहीं पड़ती। डॉक्टर वहीद कुरैशी की राय में अगर मुतज़क्करा तारीख विरासत दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो जुमे की खानदानी रवायात ठीक है, मगर दिसंबर की खानदानी रवायात गलत ठहरती हैं। इनके ख्याल में जुमा और दिसंबर की खानदानी रवायतों में से या तो एक सही है या फिर इन दोनों की यकजा करने के लिए इकबाल की विलादत की कोई और तरीक कयास करना पड़ेगी। राकम की नज़र में दिसंबर की खानदानी रवायात तखमीने के जमरे में आती है और इससे अगर मौसम सरमा मुराद ली जाए तो दोनों खानदानी रवायतें बखूबी यकजा हो सकती हैं। बाद मजीद इतराजात जो मुतज़क्करा तारीख विलादत पर किए गए हैं इनमें से एक तो ये है कि इसका अंदराज म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, लेकिन अदम अंदराज अदम पैदाइश का सबूत करार नहीं दिया जा सकता, खसूसन इस ज़माने में जब हर पैदाइश दर्ज कराने का इतना अहतमाम ना किया जाता था जितना अब किया जाता है। हमने वादे किया है कि शेख नूर मोहम्मद की औलाद से मुतलक सिर्फ एक अंदराज सही है जो शेख मोहम्मद रफ़ीक ने कराया, लेकिन बाकी तमाम के तमाम अंदराजात मशकूक हैं। ऐन मुमकिन है कि शेख नूर मोहम्मद ने ऐसी पैदाइशों के अंदराज कराने का अहतमाम ही ना किया हो। सफ़ा नंबर 99। दूसरा एतराज मुसन्नफ इकबाल दरवर खाना इन अल्फाज में करते हैं, 1876 की गलतफहमी दरअसल इस तरह पैदा हुई है कि हजरत इलामा की दोनों बड़ी और छोटी बहनों की उम्रों में तकरीबन 3-3 साल का फर्क है। फरवरी 1873 में पैदा होने वाला लड़का भी अपनी बहन मरहूमा तला भी जन्नत मकानी ने तकरीबन 3 साल छोटा था। इस पैदाइशी कायदे कुलिये के पेश नज़र मरूर अयाम के साथ खानदान में हजरत अलामा को फरवरी 1873 में पैदा होने वाले लड़के के 3 साल बाद 1876 में पैदा शुदा समझा जाने लगा। बहन भाइयों के एक जैसे पैदाइशी फर्क ने इस ख्याल को मजीद तकवीत बख्शी, क्योंकि इस जमाने के सीधे साधे लोग ज्यादातर दो में पढ़ने के कायल ना थे, इसलिए ये गलत फहमी आस्ता आस्ता सही तारीख यानी 29 दिसंबर 1873 के मुकाबले में मशहूर हो गई और किसी को भी इसका ख्याल ना रहा कि 1876 में तो अलामा साहब की छोटी अमशीला पैदा हुई थी। चुनाचा हकीमल उम्मत को भी अपने बुजुर्गों की इसी रवायात का सहारा लेना पड़ा और इसी तरह उन्होंने अपने तहकीकी मकाले के तारफी नोट और पासपोर्ट में अपना सन पैदाइश 1876 ही दर्ज फरमाया। पहले तो ये वाजे कर देना जरूरी है कि इकबाल ने तारफी नोट में सन विलादत को सैन में 1876 ही तारीख नहीं किया, बल्कि हिजरी साल की पूरी तारीख 3 ज़िलक़ादा 1294 भी दर्ज की है। दूसरी बात यह है कि इकबाल के खानदान में ऐसे कई पैदाइशी कुलिये कैदे की मौजूदगी का सबूत मौजूद नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इकबाल के वालदैन के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए जिनमें से एक शीर ख्वारी की उम्र में फौत हो गया, मगर इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं कि इनके बच्चे किसी मखसूस ख़ानदानी फार्मूले के मुताबिक पैदा हुए। मुसन्नफ की राय में अगर इकबाल एक मरहूम लड़के की पैदाइश के फौरे पूरे 10 माह बाद पैदा हुए तो ये वकूआ ना सिर्फ इस नाम नहाद फार्मूले के खिलाफ था, बल्कि एक ही साल में 2 बच्चे पैदा होना एक ऐसा इत्तेफाक था जिसे ख़ानदान के अफराद ज़रूर याद रखते, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं है। तीसरा एतराज बकौल मुसन्नफ इकबाल दरवर खाना ये है कि इकबाल की पहली बीवी करीम बीबी की रवायत के मुताबिक 1893 में शादी के वक्त इकबाल की उम्र 20 बरस से कुछ कम थी। इस सिलसिले में पंजाबी ओहदादार के नाम से कर्नल ख्वाजा अब्दुल रशीद ने एक मजमून चट्टान लाहौर के 27 नवंबर 1972 के एक शुमारे में शाया किया। कर्नल ख्वाजा अब्दुल रशीद ख्वाजा फिरोजुद्दीन के भतीजे हैं जो ख्वाजा फिरोजुद्दीन इकबाल के हमजुर्फ थे और इनकी पहली बीवी की छोटी बहनों में से एक से ब्याहे हुए थे। कर्नल ख्वाजा अब्दुल रशीद ने तहरीर किया है कि करीम बीबी के बयान के मुताबिक शादी के वक्त इनकी उम्र 15 साल थी और इकबाल इनसे 5 साल बड़े यानी 20 साल के थे। इकबाल की पहली बीवी का इंतकाल 1946 में हुआ, इसलिए उन्होंने कर्नल ख्वाजा अब्दुल रशीद को ये बात बताई तो अपनी फौतगी से पहले बताई होगी, मगर इकबाल की इब्तदाई जिंदगी और पहली शादी के मौजू पर कर्नल ख्वाजा अब्दुल रशीद का एक अंग्रेजी मजमून पाकिस्तान टाइम्स की 12 जुलाई 1946 की इशात में छपा है। जिसमें उन्होंने इकबाल की पहली शादी का निकाहनामा शाया किया और इकबाल की तारीख़ पैदाइश के जिक्र के साथ ये भी तहरीर किया है कि करीम बीबी से कई बार इकबाल के बारे में गुफ्तगू हुई। बहरहाल उन्होंने इस मजमून में मुतज़क्करा बात का कोई हवाला नहीं दिया, बल्कि तहरीर करते हैं कि शाया करदा निकाहनामे से जाहिर है कि इकबाल की पहली शादी 4 मई 1893 को गुजरात में हुई, सफा नंबर 101। तब उन्होंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और इनकी उम्र बमुश्किल 16 साल थी, क्योंकि इनकी तारीख पैदाइश 9 नवंबर 1870 है। इसी मजमून में उन्होंने निकाहनामे पर कोहान निकाह में से एक हाजी नूर मोहम्मद वल हातम मीर कौम कश्मीरी सकना सियालकोट का नाम पढ़कर समझ लिया है कि ये गवाह निकाह इकबाल के वालिद थे, और नतीजा निकाला कि इकबाल का अपने आप को ब्राह्मण नजादिया सप्रो बयान करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इनके वालिद ने तो अपने नाम के साथ कौमियत मीर लिखी थी और कश्मीर के मीर मुगल या तुर्क नस्ल के हैं। उन्होंने इतना मालूम करने की कोशिश भी नहीं की कि शेख नूर मोहम्मद को हाजी सादत नसीब ना हुई थी, इसलिए वो कभी हाजी नूर मोहम्मद नहीं कहलाए। इनके वालिद का नाम हातम ना था बल्कि शेख रफीक था और हाजी नूर मोहम्मद वल हातम मीर इनके एक कराबतदार थे, जिनके भतीजे फजलद्दीन मीर से शेख नूर मोहम्मद के छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद की नवासी ब्याही हुई थी। शेख अता मोहम्मद के एक खत के मुताबिक जो शेख इजाज़ अहमद को तहरीर किया गया, शादी के वक्त करीम बीबी इकबाल से उम्र में 2-3 साल बड़ी थी और इस बात की तस्दीक इकबाल की बहनों ने भी की है। सैयद हामद और जलाली की तसनीफ अलामा इकबाल और इनकी पहली बीवी के सफहात 183 और 172 पर दर्ज है कि करीम बीबी 1946 में फौत हुई। इसी किताब के सफ़ा 26 पर उनकी तस्वीर के नीचे तहरीर है, बा उम्र 70 साल वफात से 4 बरस कबल। अगर उन्होंने 1946 में 70 बरस की उम्र में वफात पाई तो इनका सन विलादत 1875 या 76 होगा, और अगर इकबाल से इनकी 5 साल बड़े हुए थे तो इनका सन पैदाइश 1870 या 71 बन जाता है, जो किसी लिहाज से दुरुस्त नहीं। बहरहाल मरकजी तारीख विलादत कमेटी ने अपनी तहकीकात के दौरान करीम बीबी की तारीख पैदाइश मालूम करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी गुजरात से रजू किया और रजिस्टर पैदाइश व मवाद में दर्ज इनकी तारीख विलादत 22 मार्च 1874 पाई गई। इस हिसाब से अगर इकबाल इनसे 5 साल बड़े थे तो इनका सन विलादत 1869 बन जाता है, जो कतई गलत है, लेकिन अगर 3 साल छोटे थे तो सन विलादत 1877 निकलता है। इस जमन में डॉक्टर वहीद कुरैशी की तहकीक भी मुलाहजा के काबिल है। इन्होंने अपने मजमून के साथ करीम बीबी के वालद डॉक्टर अता मोहम्मद की 2 लड़कियों की पैदाइशों के म्यूनसिपल इंदराजात 22 मार्च 1874 और 20 अप्रैल 1877 के अक्स शाया किए हैं और नतीजे पर पहुंचे हैं कि 22 मार्च 1874 का इंदराज करीम बीबी से मुतल्लक नहीं बल्कि डॉक्टर अता मोहम्मद के हाँ पैदा होने वाली बात की किसी लड़की का है, क्योंकि सैयद हामद जलाली के बयान के मुताबिक करीम बीबी जद्दा में पैदा हुई, जहाँ इनके वालद वाइस कौंसल के अहदे पर फायज थे। वो 10 वर्ष जद्दा में रहीं और अरबी बेतुकान बोलती थी। डॉक्टर वहीद कुरैशी की राय में करीम बी की पैदाइश का मकान 1871 में है और इस हिसाब से खानदानी रवायात के मुताबिक अगर वो इकबाल से 2-3 साल बड़ी थी तो इकबाल का सन विलादत 1873 शुमार होगा। हम तस्लीम करते हैं कि इस बारे में सैयद हामद जलाली की मालूमात का जरिया करीम बीबी से इकबाल के फरजान आफ्ताब इकबाल होंगे। सैयद हामद जलाली ने डॉक्टर अता मोहम्मद का सन विलादत 1859 बयान किया है। इस हिसाब से डॉक्टर वहीद कुरैशी के करीम बीबी के साल विलादत से मुतल्लक मफरूजे के मुताबिक इनके वालद डॉक्टर अता मोहम्मद की उम्र 12 साल बनती है। गोया वो 12 वर्ष की उम्र में जद्दा में वाइस कौंसल के अहदे पर फायज थे और इसी उम्र में इनके यहाँ करीम बीबी पैदा हुई। यह इस्तदलाल क्यों कर कबूल किया जा सकता है? बरकैफ बहाल अहले इलम 9 नवंबर 1877 को तारीख विलादत इकबाल के तौर पर तस्लीम नहीं करते। इनमें से एक के ख्याल में तो इस तारीख विलादत का ऐलान सियासी मसहलत की बिना पर किया गया, मगर इकबाल के साल विलादत को 1873 की तरफ ले जाने की खातर इनके इस्तदलाल की कड़ियाँ बज़ाहिर बहुत कमज़ोर मालूम होती हैं। मसलन डॉक्टर वहीद कुरैशी म्यूनसिपल अंदराजात की खामियों को तस्लीम करते हुए अपने हिसाब से 1873 की मुताबिकत इकबाल के तलीमी रिकार्ड से पाते हैं। इनके नज़दीक इकबाल के खानदान के अबराज के बयान में या तो تناقص ہے یا حافظے کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں وہ اقبال کی حلقہ احباب میں سے کسی کرم بی بی کے حافظے کی بنیاد پر دیے گئے بیان کی تائیدی شہادت کتاب اقبال دربن خانہ یا کرنل خواجہ عبدالرشید کے مضمون میں پیش کردہ اقبال کی پہلی بی بی کریم بی بی کے مفروضہ بیان کو قرار دیتے ہیں، اور پھر کرم بی بی کے 1871 میں پیدا ہونے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقبال کی ولادت 1873 میں ہو سکتی ہے، کیونکہ خاندانی روایات کے مطابق وہ اپنی بیوی سے 2-3 سال چھوٹے تھے۔ راکم کی رائے میں اقبال کی اپنی بیان کردہ تاریخ ولادت کی مطابقت ان کے تعلیمی ریکارڈ سے 1873 کے مطابق کے مقابلے میں زیادہ سہولت سے ہوتی ہے۔ مزید برآں واقعاتی شہادت اور خاندان اقبال کے بزرگ اور معتبر افراد کے بیانات بھی بمقابلہ 1873 اسی سن ولادت کی تائید کرتے ہیں۔ ان شواہد کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی تاریخ ولادت 3 ذی قعدہ 1894 ہے، جو 9 نومبر 1877 کے برابر ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 104 ماخذ باب نمبر 3۔ نمبر 1 انوار اقبال مرتبہ بشیر احمد ڈار صفحہ 73۔ نمبر 2 سہانی خاکہ انگریزی میں تحریر کرتا ہے، جس کے متن کے لیے دیکھیے نقش اقبال اس سید عبد الواحد معینی بالمقابل صفحہ 17۔ نمبر 3 اصل کے عکس کے لیے دیکھیے روزگار فقیر نقش ثانی اس فقیر سید وحید الدین صفحہ 232۔ نمبر 4 انوار اقبال صفحہ 79 سر عبد القادر کے حالات اقبال پر مضمون میں جو خدا ننگ نظر لکھنؤ کے شمارہ مئی 1902 میں شائع ہوا، اقبال کی تاریخ ولادت یا سن ولادت کی تفصیل موجود نہیں۔ دیکھیے اقبال جادوگر ہندی نصاب اس عتیق صدیقی مکتبہ جامعہ نئی دلی صفحات 134 اور 144۔ نمبر 5 نیز ملحظہ ہو بیان مشفق خواجہ شائع کردہ روزنامہ جنگ کراچی 26 اپریل 1971۔ نمبر 6 روزگار فقیر نقش ثانی صفحہ 232۔ نمبر 7 نقوش اقبال نمبر 6 صفحہ 19 دسمبر 1977 علامہ اقبال کی تاریخ ولادت صفحہ 10۔ نمبر 8 انوار اقبال صفحہ 73۔ نمبر 9 صفحہ 10 کتاب مذکور صفحہ نمبر 10 نقش اقبال صفحہ نمبر 14-15۔ نمبر 11 اعزہ صفحہ 15 یان مارک کے مضمون محمد اقبال کی تاریخ ولادت انگریزی کے لیے دیکھیے تیغ اور عصائے شاہی مرتبہ رفعت حسن انگریزی مطبع اقبال اکیڈمی لاہور 1977۔ نمبر 12 اس سلسلہ میں این میری شمل کا استدلال وہی ہے جو یان مارک کا ہے۔ یان مارک کے اندازے کے مطابق اقبال کے اسکاچ مشن کالج میں داخلے کا امکان 16-17 سال کی عمر میں بمقابلہ 18-20 سال زیادہ قرین قیاس ہے۔ دیکھیے بال جبریل انگریزی صفحہ 35۔ نمبر 13 صفحات 229-237 کتاب مذکور۔ نمبر 14 نوٹ انگریزی شیخ اجاز احمد برائے مرکزی تاریخ ولادت اقبال کمیٹی۔ نمبر 15 صفحہ 158 کتاب مذکور اسک اندراج کے لیے دیکھیے بالمقابل صفحہ 155۔ نمبر 16 نقوش اقبال نمبر ستمبر 1977 حاشیہ صفحہ 19۔ نمبر 17 سات تحریریں مطبوعہ اردو پبلشر لکھنؤ صفحہ 42 1975۔ نمبر 18 نقوش اقبال اس سید عبد الحسن علی ندوی صفحہ 18 جگن ناتھ آزاد کے متعلق دیکھیے نقوش اقبال نمبر 2 دسمبر صفحہ 38۔ نمبر 19 اصل کے عکس کے لیے دیکھیے روزگار فقیر نقش ثانی بالمقابل صفحہ 233۔ نمبر 20 روزگار فقیر نقش ثانی صفحہ 231۔ نمبر 21 اقبال دربار خانہ صفحہ 157۔ نمبر 22 نوٹ انگریزی شیخ اجاز احمد۔ نمبر 23 عکس کے لیے دیکھیے روزگار فقیر جلد دوم صفحہ 119۔ نمبر 24 اقبال دربار خانہ صفحہ 155۔ نمبر 25 ایزن صفحات 155-158۔ ਨੰਬਰ 26 ਬਹਵਾਲਾ ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਸਫ਼ਾ 39, ਨੰਬਰ 27 ਮਰੱਕਾ ਇਕਬਾਲ ਮਰਤਬਾ ਜਗਨਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾਸ਼ਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਤਲਾਆਤ ਵ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਹਕੂਮਤੇ ਹਿੰਦ 1977 ਸਫ਼ਾ 7, ਨੰਬਰ 28 ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 7 ਕਿਤਾਬ ਮਜ਼ਕੂਰ, ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੀਏ ਹਯਾਤੇ ਇਕਬਾਲ ਇਜ਼ ਐਸ ਐਮ ਨਾਜ਼, ਸਫ਼ਾ 15 ਜਗਨਨਾਥ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਨਸਬ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕਬਾਲ ਮੇਂ ਬਾਬੇ ਸਾਲਿਕ ਕੋ ਲੋਲ ਹਜ ਕਰ ਜਿੰਦੇ ਆਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਮਲਾਹਿਜ਼ਾ ਹੋ ਮਰੱਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਫ਼ਾ 7, ਇਸੀ ਗਲਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖੀਏ ਯਾਦ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਸਾਬਰ ਕਲੋਰੀ ਸਫ਼ਾ 5, ਨੰਬਰ 30 ਨਕੂਸ਼ੇ ਇਕਬਾਲ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 22, 23, 31 ਇਕਬਾਲ ਦਰਵਾਨ ਖਾਨਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਤ 156, 159 ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਦਰਾਜਾਤ ਨਕਲ ਕੀਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬਰ 32 ਐਜ਼ਨ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸਫ਼ਾ 158, ਨੰਬਰ 33 ਨਕੂਸ਼ੇ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 24, ਨੰਬਰ 34 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 39, ਨੰਬਰ 35 ਇਕਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨਾ ਸਫ਼ਾ 155, ਨੰਬਰ 36 ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਨੰਬਰ 37 ਐਜ਼ਨ, ਨੰਬਰ 38 ਐਜ਼ਨ, ਨੰਬਰ 39 ਨਰਿੰਗ ਖਿਆਲ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 1932 ਸਫ਼ਾ 25, ਨੰਬਰ 40 ਸਫ਼ਾ 163 ਕਿਤਾਬ ਮਜ਼ਕੂਰ, ਨੰਬਰ 41 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਕਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 15, 16, ਨੰਬਰ 42 ਇਕਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨਾ ਸਫ਼ਾ 153, 163, ਨੰਬਰ 43 ਨਰਿੰਗ ਖਿਆਲ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 1932 ਸਫ਼ਾ 47 ਮਕਾਲਾ ਬਾ ਇਨਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ, ਨੀਸ ਦੇਖੀਏ ਹਯਾਤੇ ਇਕਬਾਲ ਮਤਬੂਆ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਸਫ਼ਾਤ 12, 13, ਨੰਬਰ 44 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 15, ਨੰਬਰ 45 ਇਕਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਖਾਨਾ ਸਫ਼ਾ 155, ਨੰਬਰ 46 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾਤ 24, 25, 30, ਨੰਬਰ 47 ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ ਕਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਤਾਲਿਆ ਮਤਬੂਆ ਮਕਤਬਾ ਅਦਬ ਜਦੀਦ ਲਾਹੌਰ 1965 ਸਫ਼ਾਤ 302, 307, ਨੰਬਰ 48 ਨਕਸ਼ੇ ਇਕਬਾਲ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਸਫ਼ਾ 17, 49 ਨਕੂਸ਼ੇ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 18, ਨੰਬਰ 50 ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਜੇ ਵਹੀ ਮਕਾਨ ਥਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਕਬ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਿੱਬਾ ਰਹਾ। 51 ਨਕਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਫ਼ਾ 18, 52 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 14, ਨੰਬਰ 53 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ 14, 54 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ 30, ਨੰਬਰ 55 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ 30, 56 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ 30, 57 ਐਜ਼ਨ ਸਫ਼ਾ 15, 58 ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, 59 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾ 24, ਨੰਬਰ 60 ਸਫ਼ਾ 161 ਕਿਤਾਬ ਮਜ਼ਕੂਰ, ਨੰਬਰ 61 ਐਜ਼ਾ ਸਫ਼ਾ 161, ਨੰਬਰ 62 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਲਾਦਤ ਸਫ਼ਾਤ 27, 30, ਨੀਸ ਦੇਖੀਏ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਉਨਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸਫ਼ਾ 22, ਨੰਬਰ 63 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਉਨਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸਫ਼ਾ 22, ਨੰਬਰ 64 ਨਕੂਸ਼ ਇਕਬਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਦਸੰਬਰ 1977 ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਫ਼ਾ 40, ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 109 ਬਾਬ 4 ਬਚਪਨ ਔਰ ਲੜਕਪਨ, इकबाल की पैदाइश से कुछ रोज कबर इनके सूफी मिनशन वालद ने ख्वाब में देखा कि किसी वसी मैदान में बहुत से लोग फिजा में चक्कर लगाते हुए एक सफेद कबूतर को हाथ उठा उठाकर दीवाना वार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे उतरता और कभी आसमान की तरफ उड़ जाता। बिलाकर इसने अचानक फिजा में गोता लगाया और इकबाल के वालद की झोली में आन गिरा। शेख नूर मोहम्मद इसे इशारा गैबी समझे और ख्वाब की तबीर ये की कि इनके यहाँ बेटा पैदा होगा जो खिदमत इस्लाम में नाम पैदा करेगा। जुमा तेल जिकद 1294 मुताबिक 9 नवंबर 1870 के दिन सियालकोट की फिजा में अभी नमाज फजर की अजानें बुलंद होना शुरू हुई थी कि शेख नूर मोहम्मद के छोटे से एक मंजिला मकान की तारीख कोठरियों में से किसी एक में चिराग की टमटमाती हुई रोशनी में एक सुर्ख व सफेद प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ जिसने घर के मकीनों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। 40 साल शेख नूर मोहम्मद ने अपने ख्वाब की नस्बत से नामलूद का नाम मोहम्मद इकबाल रखा। नन्हे मुन्ने इकबाल के भाई अता मोहम्मद तब 18 साल के थे और गलबन शादीशुदा थे। बहन फातिमा भी अता मोहम्मद से छोटी थी और हो सकता है कि ब्याह के बाद अपने शौहर के घर आबाद हों, मगर बहन तला भी 7 साल की थी। मकान में इनके चाचा शेख गुलाम मोहम्मद के अहल वयाल भी रहते थे। इस गरीब या मतवसत अलहाल खानदान में नन्ना मुन्ना इकबाल अपनी वालदा इमाम बी के साया शफकत में रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ने लगा। बिजली की सहूलत से महरूम इस घर के महदूद दलान में इसने चलना सीखा और फिर तालीम के आगाज के बाद इसी घर की तारीख कोठरियों में चिराग की रोशनियों में इसने इब्तदाई सबक अजबर किए। शेख नूर मोहम्मद खुद चूंकि बड़े दीनदार आदमी थे इसलिए इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे को सिर्फ दीनी तालीम दिलवाएं। वो सियालकोट के उलमा व फजला से दोस्ताना मरासम रखते थे और आरफ दीन की तफहीम के लिए बाद अवकात मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन के यहाँ जाया करते थे। मौलाना गुलाम हसन मोहल्ला शुवाला की मस्जिद में दर्स भी देते थे। चुनाचा जिस रोज इकबाल 4 साल 4 माह की उम्र को पहुंचे शेख नूर मोहम्मद इन्हीं मस्जिद में मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। इकबाल ने इसी मस्जिद में दर्स से कुरान से तलीम की इब्तदा की। ये तो वसूख से नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने कितना अरसा मौलाना गुलाम हसन की दरसगाह में कुरान मजीद पढ़ा, मगर ये मुद्दत तकरीबन 1 साल के लगभग थी। एक दिन मौलाना सैयद मीर हसन दरसगाह में आए और इकबाल को वहाँ दर्स लेते देखा। वो इसकी कुशादा पेशानी मतीन सूरत और भूरे बालों में से बेहद मुतासर हुए और मौलाना गुलाम हसन से पूछा कि यह किसका बच्चा है। जब इन्हें मालूम हुआ कि यह शेख नूर मोहम्मद का लड़का है तो इनके पास जा पहुंचे और क्योंकि शेख नूर मोहम्मद को ख्वाब को खूब जानते थे इसलिए इन्हें समझाया कि इस बच्चे को महज दीनी तालीम दिलवाना ना काफ़ी नहीं बल्कि इसे जदीद तालीम से भी आरास्ता करना ज़रूरी है, लिहाजा इसे दरसगाह से उठवा कर इनकी तहवील में दे दिया जाए। शेख नूर मोहम्मद ने कुछ दिन तो पस व पेश किया मगर सैयद मीर हसन के इसरार पर इकबाल को इनके सुपुर्द कर दिया। चूँकि चुनच्चा इकबाल ने अपने घर के करीब ही कोचा मीर हसामुद्दीन में सैयद मीर हसन के मकतब में उर्दू फारसी और अरबी अदब सीख पढ़ना शुरू किया। अपनी इब्तदाई तलीम के मुतलक इकबाल खुद बयान करते हैं। सफ़ा नंबर 111। पंजाब में इन दिनों इल्म व हिकमत का खात्मा हो चुका था। मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे तलीम दिलवाएं। उन्होंने अव्वल तो मुझे मोहल्ले की मस्जिद में बैठा दिया, फिर शाह साहब की खिदमत में भेज दिया। इकबाल नहायत ज़हीन और होनहार थे इसलिए मीर सैयद मीर हसन ने इन्हीं बड़ी तवज्जो से तलीम देना शुरू की। यह सिलसिला तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहा। इसी दौरान सैयद मीर हसन ने स्कॉच मिशन स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। चूँकि वह मुसलमानों में जदीद तलीम के फ़रोग के ज़बरदस्त हामी थे इसलिए उन्होंने शेख नूर मोहम्मद की रजामंदी हासिल करके इकबाल को स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल करा दिया। इस बात का सबूत मौजूद है कि इकबाल ने तकरीबन 7 वर्ष की उम्र में 1884 में स्कूल की पहली जमात में दाखिला लिया, मगर चूंकि वह दूसरे बच्चों से ज़हानत में बहुत आगे थे इसलिए पहली जमात का इम्तिहान पास करने के बाद 1885 से लेकर 1891 तक के 6 सालों में उन्होंने 7 जमातें पास कर ली। वो उस्तादा से सिर्फ स्कूल में ही ना पढ़ते थे बल्कि स्कूल के बाद सैयद मीर हसन के घर भी में भी इनकी तलीम का सिलसिला जारी रहता और सैयद मीर हसन का तो ममूर था कि अगर बाजार में सौदा सर्फ लेने जाते तो भी शगिर्द पीछे पीछे चलते और 100 तदरीस का सिलसिला टूटने ना पाता। इकबाल के घर का माहौल नहायत सादा और पाकीज़ा था। आमदनी का जरिया या तो शेख नूर मोहम्मद की दुकान थी या अपनी तनख्वाह का वो हिस्सा जो शेख गुलाम मोहम्मद रोपड़ से अपने अहल अयाल की कफालत के लिए भिजवाते थे। जब तक वो वहाँ मुकीम रहे, घरदारी का सारा इंतजाम इमाम बीबी के हाथ में था। दुकान से कलील आमदनी के सबब एक वक्त ऐसा भी आया कि शेख नूर मोहम्मद को सियालकोट के एक रईस डिप्टी वजीर अली बलग्रामी के यहाँ पारचा दर्जी की मुलाजमत करना पड़ी। ताहम चंद माह बाद उन्होंने वो मुलाजमत तर्क कर दी। इकबाल के बाद सवाना नगार मुलाजमत तर्क करने की वजह ये बताते हैं कि इमाम भी शेख नूर मोहम्मद की तनख्वाह को हाथ ना लगाती थी, क्योंकि शुबा था कि डिप्टी वजीर अली के बाद जराए आमदनी शरण नजायज हैं। बहरहाल ये फर्जी रवायत बयान करके बेचारे डिप्टी साहब पर ना हक अतहमाम तराशी गई। मुलाजमत तर्क करने की जो वजह शेख नूर मोहम्मद ने इजाज़ अहमद की मौजूदगी में एक अजीज से बयान की, वो इस रवायत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शेख इजाज़ अहमद के बयान के मुताबिक रिज़्क़े हलाल पर गुफ्तगू के दौरान शेख नूर मोहम्मद ने बताया कि डिप्टी वजीर अली के यहाँ मुलाजमत के कुछ अरसे बाद इन्हीं ज़ाती तजर्बे से एहसास हुआ कि डिप्टी साहब के यहाँ पारचा दर्जी का काम तो बराए नाम था, या इतना नहीं था कि एक हमा वक़्त ख़त्याम की ज़रूरत हो, अलबत्ता हाजर पाशी और मुसाहबत का काम ज़्यादा था। डिप्टी साहब को तसव्वुर से लगाव था और अपनी फुर्सत के अवकात में वो अक्सर शेख नूर मोहम्मद से इस मौजू पर गुफ्तगू करते। इस बिना पर शेख नूर मोहम्मद के दिल में खलश रहती थी कि डिप्टी साहब से जो तनख्वाह पारचा दर्जी के लिए ही मिलती है, इसका बेशतर हिस्सा रिज़्क़े हलाल नहीं। दो एक मरतबा उन्होंने डिप्टी साहब से मुलाजमत तर्क करने की इजाज़त चाही, मगर वो बात को टाल गए। एक दिन शेख नूर मोहम्मद के इसरार पर उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ है जो आप मुलाजमत छोड़ना चाहते हैं, अगर तकलीफ बयान कर दें तो इसका अजाला कर दिया जाएगा। बा आलम मजबूरी शेख साहब शेख नूर मोहम्मद ने अपनी कल्बी खलश का इजहार किया, जिसे सुनकर वो बहुत मुतासर हुए और तरक मुलाजमत की इजाज़त दे दी। जब शेख नूर मोहम्मद रुखसत होने लगे तो उन्होंने मुलाजम को हुक्म दिया कि सिलाई की मशीन जो उन्होंने अपने खर्च से मंगवाई थी शेख नूर मोहम्मद के यहाँ पहुँचा दी जाए। मशीन आखिर इनकी मलकियत थी, इसलिए शेख नूर मोहम्मद ने अजर किया। वो कहने लगे कि मुझे तो अब इसकी ज़रूरत नहीं और आपके काम की चीज़ है।